来听美姬。
我们上镜。आज के वरदान से चालू करते हैं। क्या कहा वरदान में बाबा ने? बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर। विश्व को अगर कंट्रोल करना है तो अभी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। समेटने की शक्ति, विस्तार को सार और सार को विस्तार, शरीर में आना और शरीर से बाहर जाना और अव्यक्त स्थिति, ये दोनों कार्य एक सेकंड में। जितना हलचल हंगामा बाहर उतना अंदर शांत स्थिति हो, चाहे दुख की कितनी भी परिस्थिति हो पर अंदर सुख की स्थिति हो, इसको बाबा ने कल के वरदान में क्या कहा था? महावीर। तो एक सेकंड में शरीर में आना और शरीर से बाहर जाना, एक सेकंड में विस्तार को सार में करना और सार को विस्तार करना, सार को विस्तार करना, इसी को चिंतन कहा जाता है। विस्तार को सार करना, इसको बिंदी लगाना, ये सारे ही कार्य बाबा कह रहे एक सेकंड में करो तो पासवित ऑनर होंगे। जितने विकार है, जितना देह भान है, जितने इंद्रियों के सुख है, कई लोगों ने द्वापर युग से आज तक इन सब पे विजय पाने का प्रयत्न किया। भोग विलास, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण काम वासना, परंतु आज तक के जितने प्रयत्न थे सारे विफल हुए, सफल नहीं हो पाए, क्योंकि देह भान में ही रहकर देह भान से ही मुक्त नहीं हुआ जा सकता। देह भान में ही है और देह भान से ही मुक्त होने की चेष्टा कर रही है आत्मा। काम विकार है, देह भान में रहकर काम विकार के बारे में सोच रहे हैं मुक्त होने के लिए, इसके लिए मुक्ति भी नहीं मिली। मार्ग एक ही है, सारा हमारा जो ज्ञान है उसका एकमात्र सार है आत्मा को अलग और देह को अलग कर देना। ये मैं हूं और ये वो है, ये अलग है और ये अलग है। सारी अव्यक्त वाणियां, सारी मुरलियां, जो भी पुरुषार्थ है उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि मैं इस देह से भिन्न हूं। जब तक ये नहीं होगा विकारों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। जब तक ये नहीं होगा देह भान खींचता रहेगा, काम वासना खींचती रहेगी, क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो उसके पीछे पीछे सब कुछ है। देहभान आया तो देहभान के पीछे सब कुछ है। तो सारा पुरुषार्थ का सार है लंबा समय तक आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जो रस देहभान में है उससे कई गुना रस आत्माभिमान में है। ऐसा नहीं कि देहभान में कोई सुखी नहीं है, सुख है करके तो सारा संसार उसके पीछे है, परंतु आत्माभिमान का जो टेस्ट है ये लेने के बाद वो फीका पड़ता है। दूसरा, देही अभिमान का जो सुख है, देह का जो सुख है, वासनाओं का जो सुख है, वो लेने के बाद ज्ञान के प्रति रुचि स्वतः ही कम हो जाती है। देहभान में आत्मा जितनी रहती है ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, ज्ञान चर्चा के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति स्वतः ही रुचि कम हो जाती है, स्वतः ही बिना कुछ किए। और देही अभिमानी स्थिति में रहते ही स्वतः ही वो सारी चीजें अच्छी लगती है जो ज्ञान से संबंधित है, स्वतः ही मुरलियां अच्छी लगने लगती है। अच्छी लगना, वैसे तो सभी कहेंगे सबको ही अच्छी लगती है, वो अच्छी लगने की बात नहीं कह रहा हूं। इंटरेस्ट, रुचि, किसी को अगर दी जाए लो अव्यक्तवाणी पढ़ो, नहीं इंटरेस्ट होता है, क्यों पढ़े, वही बात है उसमें, वो रुचि से पढ़ना और वो पढ़ते पढ़ते ऐसे लगना कि इससे कुछ मुझे मिल गया, वो नहीं होता है। क्यों? तो दो आधार है, जब तक ज्ञान नहीं तब तक योग भी अच्छा नहीं लगता। कई लोग केवल योग के पीछे, ज्ञान में इतना रस नहीं है, वो कहते हैं बस योग करो। दूसरा एक वैसा ही पॉइंट है कि जिसका योग नहीं है उसको ज्ञान में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति में ही ज्ञान अच्छा लगता है, देह अभिमान की स्थिति में ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत ही सूक्ष्म राज है, ज्ञान है तो योग है और योग है तो ज्ञान है। योग अर्थात यहां मैं बात कर रहा हूं केवल आत्माभिमानी स्थिति, बाबा परमात्मा को अभी लाया ही नहीं है इसमें, केवल आत्माभिमानी स्थिति, मैं देह नहीं परंतु आत्मा हूं, केवल आत्मा का ही चिंतन करते रहना। वे क्या चिंतन करे पर आत्मा का, शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप वो सारे तो है, आत्मा का चिंतन अर्थात उस स्वरूप में स्थित रहना। कैसे आत्मा का चिंतन करने में क्या क्या बातें आ सकती है? एक तो सात बातें जो है, आत्मा का क्या धर्म है, शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप, ये सारे जो रूप बताए आत्मा के, एक तो उन स्वरूपों में, दूसरा उसके अलावा शक्ति स्वरूप सारा ही, दूसरे उसके अलावा आत्मा चिंतन, कल की मुरली, बाप दादा किसको देख रहे हैं, संडे की मुरली, कौन से संगठन को देख रहे हैं, संडे की मुरली, स्वचिंतक संगठन, शुभ चिंतक संगठनों को देख रहे हैं। और शुभ चिंतक की कितनी सुंदर परिभाषा दी है, शुभ चिंतक अर्थात शुभ चिंतन में रहने वाले और स्वचिंतन में रहने वाले, तो स्वचिंतन ही शुभ चिंतन है और उन्हीं को शुभ चिंतक कहा जाएगा। तो स्वचिंतन अर्थात स्वयं का चिंतन अर्थात आत्मा का चिंतन, क्या चिंतन करे आत्मा के बारे में, आत्मा का चिंतन करते करते ही आत्माभिमानी स्थिति उपलब्ध होती है। जैसे एक तो है कि योग में बैठ रहे तब आत्म स्वरूप में स्थित हो रहे, वो नहीं बात कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूं आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की, वो चलते चलते उठते बैठते खाते पीते कार्य व्यवहार में हल्का हल्का ये आत्मा का चिंतन चलता रहे, हल्का हल्का भी चला रहे चलेगा ना, तो स्थिति ऊपर रहती है, क्योंकि कार्य व्यवहार में ही देह भान आता है। केवल ये कि मैं एक आत्मा हूं सबसे पहला संकल्प, दूसरा जब मैं आत्मा हूं तो मैं देह नहीं हूं, तीसरा ये आत्मा कैसी है, आत्मा का वर्णन करो अपने मन के अंदर कैसी है,
विश्व के
ज्योति बिंदु
लाइट
स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट सितारा डायमंड हीरा अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप पवित्र भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान, ये सारा ही उसके स्वरूप है। मतलब आत्मा के बारे में सब कुछ, आत्मा कैसी है सबसे पहले, तो फिर आत्मा कहाँ है, मैं आत्मा यहां हूं, ये पता सबको है पर हम इसको इमर्ज कर रहे हैं कि मैं आत्मा यहां हूं, ये मेरा स्वरूप है, फिर आत्मा अविनाशी हूं। ब्रह्मा बाबा सब दादियों को लेकर यहां वहां पहाड़ियों पर जाते थे, तो क्या योग था, ये कोई इस तरह की रूहानी ड्रिल तो थी नहीं, ना कोई म्यूजिक ना कुछ ना कुछ, एक को यहां भेजा एक को वहां भेजा, बस एक घंटा चिंतन करो आत्मा अविनाशी है, यह योग एक ही इसी के बारे में चिंतन करो, बस बैठ गए मैं आत्मा अविनाशी हूं, बस यह देह विनाश हो जाएगा, यह देह समाप्त हो जाएगा, नयन छिंदंती शस्त्राणि, परंतु यह आत्मा जो है इसको शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, इस तरह का आत्मा का ही चिंतन ही है सारा। ये ज्ञान तो सबके पास है पर हम कह रहे हैं कि उसको इमर्ज करना और उसका चिंतन करना, और वो भी हर दिन और वो भी बार बार बहुत ज्यादा, ये फिर उसके बाद में वो जो स्वरूप है साथ ज्ञान स्वरूप, एक कोई भी लेना, उसका विस्तार करना, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सातों स्वरूप है उसके, उसके बारे में चिंतन कर। एक तो वो किस तत्व की, वो क्या है, कहाँ है, स्वरूप क्या है। अच्छा, ये तो हो गया मेरे बारे में। अब जो दिख रहे हैं वो भी वही है, ये भी वो है, ये भी वो है, ये भी वो है, और ये भी वो है, वो भी वो है। हम ये लक्ष्य रखें कि कम से कम आज दिन भर में इतने लोगों को आत्मा देखेंगे, कभी 10, कभी 20। अपने डिपार्टमेंट में जाते ही, डिपार्टमेंट में जाने से पहले ये संकल्प कि अगर टाइम है 9 से 12 या 1, उस 4 घंटे में कम से कम 50 लोगों को आत्मा देखना है, या 20 लोगों को आत्मा देखना है, या 30 लोगों को, केवल देखना बस, और बहुत ज्यादा नहीं। पावरफुल योग तो हमारा अमृत वेले का है, पावरफुल चिंतन हमारा अमृत वेले के बाद है, मुरली है, परंतु कार्य व्यवहार जो है उसमें ऐसा ना हो जाए कि सुबह बहुत अच्छा, शाम को बहुत अच्छा और नीचे डाउन। वो जो बीच का जो टाइम है ना, उसमें ज्योत जो है वो एकदम बुझ ना जाए, थोड़ी सी सुलगती रहे आप बीच के समय में। वही जो कार्य व्यवहार का टाइम है वो सुबह क्या किया और शाम को किया गया, दोपहर का जो टाइम है या जो जिसका, जैसे हम लोगों का 9 से 5, सारी माया 9 से 5 के बीच में। 9 तक क्या माया, अमृत वेला किया, शक्तिशाली सब किया, सब अच्छा है। 5 के बाद गए पांडव भवन और बैठे और योग किया। ये जो बीच का समय है 9 और 5, एक्चुअली यही मेन है लाइव टेलीकास्ट। बाकी तो बैकग्राउंड है, बाकी तुमने योग किया नहीं किया किसको क्या लेना देना, तुमने मुरली सुनी नहीं सुनी, याद है नहीं या कोई पूछेगा नहीं। लोग देखेंगे केवल बीच का, कितना भी कुछ कहा परंतु देखा बीच में ऐसे झगड़े, झगड़ा किया किसी के साथ, बस। ये आज की मुरली से ऐसे शब्द ना बोलो जो किसी को दुख दे, ऐसी वाणी बोल दी। अब ये ऐसी बोलने के बाद वो तुमने जो योग किया था और जो तुमने चिंतन किया था और जो ज्ञान चर्चा की थी, मुरली डिस्कशन किया था, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये दिख रहा है केवल बैक स्टेज पे, इतने ये टाइम तुम स्टेज पे हो 9 से 1 या 5 या जो जिसका टाइम है। यहां जो है इसको ठीक करने के लिए ये आगे पीछे का है सब कुछ, तो एक एक को ठीक करना चालू करना सबसे पहले। तो पहले पहले सुबह को ठीक करो, एकदम दोपहर को ठीक, कार्य व्यवहार को एकदम ठीक नहीं किया जा सकता है। 9 से 5 का जो टाइम है या जो भी डिस्क का है उसको एकदम नहीं, उसके लिए पहले बैकग्राउंड को ठीक करना। बैकग्राउंड में फर्स्ट स्टेप है सुबह का बैकग्राउंड, वो ठीक हो गया। शक्तिशाली अमृत वेला रोज होने लगा, एक शक्तिशाली चिंतन रोज होने लगा, और स्थिति स्वतः ही सुखमय स्थिति उपलब्ध हो रही है, ऐसे लग रहा है हमको कि अभी ऊपर हो गए। एक फिर शाम का चालू करो अभी ठीक करना, पहला सुबह ठीक करना, फिर शाम वालों को ठीक करना, और फिर जब दोनों ठीक हो जाए फिर ये जो बीच का है इसको स्वतः ठीक होना तो वो पहले से ही चालू हो जाएगा, पर अभी इस पे हम पूरा फोकस कर सकते हैं। नहीं तो किसी को भी बोलो सीधा कि तुम्हारी ड्यूटी आवर्स में अच्छी स्थिति रहनी चाहिए। अरे जिसका अमृत वेला ही नहीं है, जिसका कोई ज्ञान चिंता ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, तो वो तो बीच का तो कुछ होने का ही सवाल ही नहीं है। पहला तो फाउंडेशन ठीक हो जाए। फाउंडेशन जो है, लास्ट संडे की मुरली लास्ट लाइन, अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर बैठो, अमृत वेले शरीर से डिटैच हो जाओ। तो सुबह ठीक कर दिया, शाम को फिर फोकस किया, शाम का ठीक हुआ, फिर दिनचर्या जो है वो आप ही ठीक होना चालू हो जाएगी धीरे धीरे। वो अल्टीमेट है, लास्ट है वो, क्योंकि वो हो गया तो बस फिर क्या रहता है, सभी ठीक हो जाए, परंतु वो लास्ट है। उसके लिए वो दोनों ठीक होने चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए बहुत सारी। अलग अलग संस्कार की आत्माएं हैं आसपास, इसका झगड़ा करने का संस्कार, इसका कुछ करने का संस्कार, कोई ज्यादा पुरुषार्थ करता है तो उसको खींचो नीचे, ऐसा किसी का संस्कार, किसी का टॉन्ट करने का संस्कार, किसी का कमेंट करने का संस्कार, ये सारी आत्माओं के बीच में रहते हुए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए उसमें। ज्ञान ज्यादा चाहिए।
जरा से भी कुछ
किसी माता को बोलो कि भाई रहे ये 10 माताओं के साथ, इतनी आसान बात नहीं है 10 माताओं के साथ रहना। कोई नई माता ज्ञान में आ गई और उसको कहो ये 10 माता है शांतिवन में, इस कमरे में 10 लोगों के साथ रहो, 10 लोगों के साथ में रहना बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। कम ज्ञान से नहीं रह सकते आप 10 लोगों के साथ। जब 30-30, 40-40 साल वाले भी नए स्थान पर नए व्यक्ति के साथ में तुरंत एडजस्ट नहीं हो सकते, तो कोई नई माता आए और उसको कहो कि रहो अभी इनके साथ, तो कितना मुश्किल है। वो इसके लिए कह रहा हूं ना, कार्य व्यवहार में ज्ञान आ जाना वो तो प्रैक्टिकल है ना, वो अंतिम है, वो आने तक ये गैप है। हम यहां ए और ये बी, ज्ञान इधर बी इधर, ये है उसका स्वरूप बन जाना। ये ज्ञान और ये बीच में बहुत सारे ये यहां भाषण देना, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना, ये सब कुछ यहीं पे है। भाषण देने वाले और भाषण सुनने वाले, इनका उससे कोई संबंध नहीं है प्रैक्टिकल से। भाषण देने का धारणा से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। व्यक्ति 8 बजे तक आराम से सो के 9 बजे जाके अमृत वेले पर पावरफुल भाषण दे सकता है। सुनने वाले बोलेंगे ऐसा भाषण आज तक कभी सुना नहीं अमृत वेले पर, इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल, क्योंकि वो पांडित्य है, वो कला है, कौशल है बोलना, कोई भी विषय को पकड़ के उसके ऊपर ज्ञान बढ़ाना और बोलना। धारणा से उसका बहुत ज्यादा संबंध नहीं, धारणा भी हो जाए वो एक दूसरा ही पुरुषार्थ है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो बहुत भाषण दे रहे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, स्थिति तो उनकी अच्छी है ज्यादा। माताओं को देखो, उनकी कई दिन रात योग में जो बैठती रहती है उनकी स्थिति कभी कभी ज्यादा अच्छी है। जो मैनेजमेंट पर क्लासेस कराते हैं वो खुद ही इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी देखा गया है। तो ये सब बहुत ही सूक्ष्म बात है। यहां कोई दिखावा आडंबर दंभ मतलब जो शो है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है इधर। इसके लिए सारा पुरुषार्थ जो है, फिर से हम वहीं पे आते हैं जहां से शुरुआत की थी, आत्माभिमानी स्थिति पर ही आ जाता है, वहीं पे आ जाता है बस, कि मैं ये हूं। और इस आत्माभिमानी स्थिति के लिए बहुत ज्यादा एकांत की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करनी है। एकांत में बैठकर स्वयं को ही सिखाना कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कहां हूं,
किस लिए आया।
हम अभी तो बाबा की तो बात ही नहीं कर रहे, केवल आत्मा में ही है बस। संसार में अब तक जो द्वापर युग से अब तक का ज्ञान, उनका ज्ञान आत्मा में आके खत्म होता है, हमारा वहां से चालू होता है। ये अंतर है हमारा और सन्यास मार्ग में, सारा ज्ञान आत्मा में आके समाप्त होता है उनका। वो भी आत्मा का संपूर्ण परिचय नहीं है, आत्मा को ही ब्रह्म कहा है, वहां वो खत्म हुआ, हमारा यहां से चालू हुआ। परंतु अगर देखा जाए तो उसने ज्ञान से ही उन्होंने अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनाई थी, उतने ही ज्ञान से। संसार के जो बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी जो हुए है, उन्होंने उस भक्ति मार्ग के उन शास्त्रों के ज्ञान से जो केवल आत्मा में आके रुकता है, उतने ही ज्ञान से इतनी ऊंची स्थिति बनाई। क्यों? क्योंकि देहभान से परे थी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा नहीं कि भक्ति एकदम ही ये है। कुछ कुछ अच्छे भक्त तो देखो तो उनकी स्थिति तो ज्ञानियों से भी अच्छी होगी। हमने तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त देखे, बहुत अच्छी जिनकी पावरफुल स्थिति है। फिर सन्यासी भी कुछ कुछ अच्छे होते, बहुत देहभान से परे रहते, ना तो खान पान में इंटरेस्ट है ना कुछ इंटरेस्ट है, बस ध्यान में बैठे रहते। भले उनको पता नहीं विधि, ना परमात्मा का परिचय, ना सृष्टि चक्र का उतना वो उस तरह का ज्ञान है जिस तरह बाबा दे रहे, परंतु स्थिति उपरांत है। यहां भले कोई योगी है, बाबा को जानता है, परंतु संसार के सभी इसमें फंसा हुआ है, साधनों में, मोबाइल में, इसमें उसमें, खान पान में, घूमने फिरने में, तो स्थिति के हिसाब से तो वो आगे निकल गए फिर तो, अगर देखा जाए तो। हाँ तो ऐसे कुछ कुछ है संसार में बहुत अच्छे।
हथौड़ा वो बनाने लो थे मटका लो लोहा लो बरकर कर वो दे दे, वो 8 बजे बैठ जाते थे तपस्या मेन रोड पे।
हाँ
तो हम ड्यूटी करके आए थे, देखते थे इतना लो वाइब्रेशन बहुत शांत है मेन रोड पर, 8 बजे वो मैं देखा तो बैठ जाता था।
तो अगर आप देखो शांत महान जिसमें संयम बहुत ज्यादा है वो आगे, कंट्रोलिंग स्वयं को जो कंट्रोल जिसके पास है, चाहे ज्ञान ये है या ना ये, बाबा का ज्ञान है या नहीं है। एक भक्त है वो एक ही बार भोजन करता है, और दूसरा हमारा कोई ज्ञानी है जिसको हर दो दो घंटे में कुछ कुछ चाहिए, कभी टोली चाहिए कभी कोचे, नहीं तो एकदम बेचैनी होती है। अब बताओ इतना श्रेष्ठ ज्ञान परंतु स्थिति कैसी है, हर दिन नया नया चाहिए। वो खाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं खाना छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कम कर दो। आज तो बाबा ने कहा ना कम ना ज्यादा, बीच का हो तो रॉयल्टी हो हर बात में। ये स्वाद लोलुपता, इंद्रिय भोग, इंद्रियों का सुख लेने की कामना, विषय वस्तुओं के सुख लेने की कामना, इससे ऊपर उड़ जाए, ऐसा हमारा ज्ञान हो कि हम इससे थोड़ा ऊपर उड़ जाए, या थोड़ी बीमारी हो गई तो उसका इतना चिंतन उतना चिंतन, चिंतन भी वर्णन भी, वर्णन तो बात मत पूछो, दिन रात उसका वर्णन एक है। कोई है जिसको तकलीफ है फिर भी सहन कर रहा है, वो सहनशीलता की जो क्वालिटी है ना वही अष्ट शक्तियों में आता है, फिर वो आत्मा योगी है। तो हमारे ज्ञान अगर हमको योगी नहीं बना रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ज्ञान में नहीं हमारे समझने में। ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊंचा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो मैं कह ये रहा था कि सन्यासियों के पास अल्प ज्ञान था, पर उस अल्प ज्ञान के आधार से ही उन्होंने इतनी तपस्या और इतनी महान अपनी स्थिति बना ली। तो हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है फिर भी हम क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो ज्ञान यहां है और हम यहां है, वो ज्ञान इधर पहुंच ही नहीं रहा है। वो ज्ञान जो जा रहा है केवल कॉन्शियस चेतन स्तर पर जा रहा है बस, अवचेतन में वासनाएं छिपी है। हम जो दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से ये करेंगे वो केवल 1% है, 9% 9 भाग जो है, 1 भाग ये है और 9 भाग अंदर से जो है वो उसके विरोध में खड़ा है। हम संकल्प कर रहे हैं मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, अंदर से 9 भाग अंदर है जो कहते हैं कि नहीं अपवित्रता तो इतनी गहरी है वो उसको उखाड़ के फेंक देती है ऐसे छोटे मोटे संकल्प को। तो सारा ज्ञान आत्मा पे आकर ठहरता है। एक ही अभ्यास जो सुबह भी करना है शाम को भी करना है और दिन भर में करना है, वो अभ्यास है आत्मा अभिमानी स्थिति का। सबको एक तो ये, दूसरा आत्मिक दृष्टि का की साधना, इसको एक साधना बनानी है आत्मिक दृष्टि। ये भी आत्मा, 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 ये बहन भी आत्मा और ये बहन भी आत्मा, सभी बहनें जो दिख रही है वो सभी आत्मा है। विशेष भाइयों को न देखा तो चलेगा, पर बहनों को विशेष करके आत्मा ही देखना। जो भी दिख रही है सभी आत्माएं, ताकि फिर और कहीं ध्यान नहीं जाएगा। ये साधना है, एक आत्मस्वरूप आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा आत्मिक दृष्टि, तीसरा संडे की मुरली थोड़ा रिवाइज करते हैं उसमें से निकालेंगे पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने संडे में, अभी जो संडे की मुरली थी,
डबल
सेवा करनी है। जैसे तुम्हें एक स्वरूप पे इतना निश्चय है, कौन सा स्वरूप, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप, पुरुषार्थ का स्वरूप, उतना ही निश्चय तुम्हें फरिश्ता स्वरूप का होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि उसने दोनों प्रकार की सेवा की, अव्यक्त सेवा, व्यक्त से फास्ट है तीव्र है। ये जो स्वरूप है ब्रह्मा कुमार का कितना निश्चय है इसके ऊपर, इसमें कभी सोचते नहीं हो, कितना भी तुमको कहने की, विदेशियों से बाबा कह रहे हैं कि कहीं तुमको कहे कि भाई तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम नहीं हो, भारत वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी है, भारत ब्रह्मा भारत का है, यहाँ का नहीं है, तुम तो कृष्ण कुमार कुमारी है, गलती से अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कह रहे हो। महारथी जो है वो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम नहीं हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे हो सकते हो, ये सारे प्रश्न उस मुरली में है। परंतु ऐसा अगर कोई कहे तो तुम्हें कितना निश्चय है कि हम ही है, हम तो होंगे, ये तो को निकाल दो बाबा ने कहा, हम तो की बात ही नहीं, हम तो है, ये निश्चय है ना। वो तो फरिश्ते के लिए कहा था, पर ये कितना निश्चय, इसमें सोचते नहीं हो, इसमें निश्चय भी पक्का है, स्पष्ट है और अनुभव में है, स्पष्ट है अनुभव में है और निश्चय बुद्धि है, निश्चय पक्का है, किसमें, ब्रह्मा कुमार स्वरूप में। अगर ब्रह्मा आ जाए और कहे कि मुझ में भगवान नहीं आता तो क्या करोगे बोलो? विजय भाई, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मुझ में भगवान नहीं आता, बोलो, निश्चय की परिभाषा परीक्षा है आपकी। हम क्या कहेंगे, अरे तुम बोलो या ना बोलो, उसमें ही आता है, ये निश्चय है। क्योंकि अनुभव की बात है, किसी के बोलने से क्या हो रहा है, जहां अनुभव, इसके लिए कहा ना क्या, तीन शब्द बाबा ने बोला, स्पष्ट है, अनुभव में है और निश्चय पक्का है। कौन से स्वरूप में, इस स्वरूप में, बी के स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, पुरुषार्थी स्वरूप, साकार स्वरूप, वैसा ही तुमको किस में निश्चय करना है, अभी स्पष्टता स्वरूप में निश्चय, वैसे ही इस स्वरूप में निश्चय हो जाए। बाबा ने भविष्यवाणियां की है, एक समय आएगा, क्या हो जाएगा, जैसे बादल चारों ओर बिखर गए हैं, वैसे चारों ओर कौन दिखेंगे, फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे, इंग्लैंड में फरिश्ते, ऑस्ट्रेलिया में फरिश्ते, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह फरिश्ते ही फरिश्ते, जैसे उड़ंत अश्तरी फ्लाइंग सॉसर दिखता है, वैसे चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे और लोग क्या कहेंगे, कौन है, क्या है, कैसे है, यही है वो, उतरते आएंगे, रिसर्च करेंगे, ढूंढने निकलेंगे तुमको, और कहेंगे फिर बाद में, ये वही है ब्रह्मा कुमार और कुमार, ये वही है जो पागलों जैसे पीछे पड़े थे, माउंट अबू चलो माउंट अबू चलो, ये वही है आत्मा परमात्मा वाले, ये वही है ओम शांति वाले, ऐसे कहेंगे ना। जैसे कोई प्रकाश अचानक किसी के ऊपर, तेज रोशनी अंधकार में, तो आंखें कैसे चौंधिया जाती है, जिसको कहते हैं आंखें में कैसे, कौन है क्या है, वैसे कहेंगे ये सफेद, जैसे अभी कहते हैं सफेद वस्त्रधारी कौन है, तब कहेंगे लाइट वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए, क्या है। ऐसा समय आएगा, कितनी अच्छी स्पष्ट भविष्यवाणी कर दी है बाबा ने मुरली में, कब की, 81 में, कि चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे। ये फरिश्ता है क्या, प्रश्न ये है, आत्मा इस शरीर में दो शरीरों में विराजमान है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर जिसको एंजेलिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, तारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सारे अलग अलग भिन्न नाम है, इसको तो सब धर्मों ने स्वीकार किया, शास्त्र में बहुत सारा वर्णन है इसका, आत्मा अंतवाहक शरीर, बाबा ने उसमें यह भी कहा अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। तो अंतवाहक शरीर से निकल, इस शरीर से निकलना और घूमना और सेवाएं करना, ये जो सेवा है इसके लिए बाबा ने कहा ना, मनसा सेवा पावरफुल कैसी हो, इसका विशेष प्लान बनाओ, टीचर से मुलाकात, मनसा सेवा पावरफुल कैसी हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। शरीर में रहना है, इसी शरीर में आत्मा जैसे कि अनुभव की यहां नहीं है, यहां से ऊपर, तो हम बात कर रहे थे फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात आत्मा जो भी संकल्प करती है, वो जो तरंगे है इस शरीर में अंदर पूरी समाई रहती है, और वो जो तरंगों से उत्पन्न जो शरीर है, प्रकाश जो है उसी को कारण शरीर कहा जाता है, वो कोई अलग से कोई शरीर नहीं है। तरंगे जो है जो संकल्प है, अगर पवित्र संकल्प है हर, तो पवित्र देह उत्पन्न होगी जो सूक्ष्म शरीर है, और उससे हम ये विजुलाइज कर सकते कि वो इस तन में नहीं है। और ये ही एकमात्र विधि है देहभान से मुक्त होने की, काम वासना से मुक्त होने की। उसके सिवा उस काम उन विकारों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक आत्मा इस देह से अलग नहीं हो जाती, तब तक विकारों पर मुक्ति नहीं हो सकती, विकारों से मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये फरिश्ता, अभी फरिश्ता किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है? आज तक बाबा ने मुरलियों में असंख्य परिभाषा दी है फरिश्ता स्वरूप की। फरिश्ता अर्थात अव्यक्त स्वरूप है। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त होकर तुम बच्चों को अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए खींच रहा है, उसी मुरली में। विदेशियों के लिए भी कहा कि तुम कमरे में जाते हो, बाबा से रूहान करते हो, तस्वीर को देखते हो, चित्र को देखते हो या चैतन्य को देखते हो? चैतन्य को देखते हो तभी तो कहते हो, जिगर से कहते हो, ये नॉलेज के आधार से नहीं, अनुभव के आधार से कहते हो ब्रह्मा बाबा। ये सारी बातें मुरलियों में। हम सीधा अभी चर्चा में आएंगे फरिश्ता स्वरूप किसे कहेंगे। फरिश्ता, फरिश्ता कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं, काल्पनिक फिगर, कि जिसके दो पंख है और हाथ में कुछ है और उड़ रहा है यहां वहां, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। फरिश्ता, फरिश्ता एक स्थिति का नाम है। इट इज अ कंडीशन इन द स्टेट ऑफ द माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है वो। तो फरिश्ता अर्थात
इच्छा नहीं होती, फरिश्ता
फरिश्ता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। उसकी बहुत सारी इच्छाएं जो है वो कम कम हो गई है, और बाबा ने ये कहा है कि जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है वो दूसरों को इच्छा, दूसरों की इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकते। तुम्हें बहुत महान कार्य करने हैं, तुम्हारे पास भिखारी आत्माएं आएंगी, इच्छा वही पूर्ण कर सकते जो स्वयं इच्छाओं से रिक्त है। जिसमें बहुत सारी इच्छा खुद ही भरी है वो क्या पूर्ण करेगा? तो एक परिभाषा है बाबा ने इस मुरली में कहा है, ये 81 की मुरली है, वहां पर विश्व कल्याण महोत्सव सेलिब्रेट हुआ था 28 तारीख से लेके तो 3 तारीख तक, 28 मार्च से 3 मार्च तक, जिसमें 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था, 5 विषय थे। तो कई विदेश से भी, एक डॉन भाई करके आया था, वो आया था उसमें, बाहर की संस्था का, उसको बड़ा आश्चर्य लगा था। 10,000 की सभा थी, 10,000 अलग अलग, मतलब बहुत बड़ा सेवा हुई थी। उसके बाद चली हुई मुरली है ये, 28 से 3 दादी चंद्रमणि उसकी अध्यक्षा थी, वो जो 28 फरवरी था उसको विश्व जागृति दिवस कर मनाया था ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। 28 फरवरी विश्व जागृति दिवस, तब से वो चालू हुआ तो 3 तारीख तक था ये पूरा जो था विश्व कल्याण महोत्सव, इसको कहा गया था, नाम दिया गया था। पहले आध्यात्मिक जागृति महोत्सव था, बाद में नाम बदला था। तो उसके बाद बाबा 11 तारीख को आए थे, जो पिछले संडे की, के पिछले संडे की मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा था बाबा ऑफिशियल नहीं आए, बाबा मुरली चलाने नहीं आए। अब ये जो मुरली है उसके 2 दिन के बाद की मुरली है, 13 तारीख की, जिसमें बाबा कह रहे हैं आध्यात्मिक जागृति कैसे होगी, ये 2 स्वरूप की सेवा से होगी। आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक क्रांति की बातें हैं यहां पर। संसार में जो भी अवतार आया है उसमें क्रांति घटित हुई है। वहां पर बुद्ध आया, सबने वेद शास्त्र को छोड़ दिया और बुद्ध के पीछे चले गए और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, शून्यवाद आ गया, वेदों का जैसे कोई महत्व ही नहीं रहा। हिंदू धर्म लोप हुआ थोड़े समय के लिए, परंतु बुद्ध आया, उसके कुछ समय के बाद शंकराचार्य आए, जो बुद्ध की शरण में गए थे, अब वो उसको छोड़ के शंकराचार्य ने पुनः स्थापना की, पुनः आध्यात्मिक जागृति लाई एक अलग प्रकार से, तो फिर से सब हिंदू धर्म की तरफ आए। परंतु शंकराचार्य आया, उसने फिर ये सारे कॉन्सेप्ट लाए, मायावाद, अध्यात्म, ये जिसको कहते हैं मोनिज्म, अद्वैतवाद जिसको कहते हैं, जिसमें ब्रह्म भक्ति है ही नहीं, उसमें संन्यास। उसके समय के बाद एक और दूसरी महान आत्मा है, जैसे दिखा है चैतन्य महाप्रभु, उसने फिर भक्ति आंदोलन शुरुआत किया। तो जब जब नई नई आत्माएं आई, वो इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति हो गई उनकी वजह से। एक एक आत्मा आई, उसका प्रभाव कुछ समय चला, कम हुआ। दूसरी आई, उसने उसको उखाड़ के फेंका, उसका प्रभाव चला। उसने आई, फिर वो आई चैतन्य महाप्रभु, फिर उसका विस्तार हुआ। वहां से सारे भक्ति मार्ग के मीरा तुलसीदास, महाराष्ट्र के सारे संत और साउथ के अलवर, वो सारे धीरे 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 भक्ति मार्ग का आरंभ हुआ जैसे कि। फिर बीच बीच में और नई नई आत्माएं आती गई। तो जब जब नई नई आत्मा आती है ऊपर से, भयंकर क्रांति होती है संसार में। बाबा कह रहे हैं आध्यात्मिक क्रांति लाओ। क्रांति कैसे आएगी, जागृति कैसे आएगी? जागृति तब लाई जाती है जब समाज सोया हुआ है। समाज अब सोया हुआ है, आज की मुरली में ही है कुंभकर्ण, सोए पड़े हैं संसार के लोग। अब ये दो प्रकार की सेवा करो, एक तो साकार की सेवा तो कर ही रहे देह के द्वारा, पर उससे ज्यादा तीव्र जो रफ्तार है वो है सूक्ष्म शरीर की सेवा, अंतवाप शरीर की सेवा, मनसा की सेवा, ताकि आप जाके उनको मिल के आओ और उनको भी अनुभव हो कि हाँ ये हमसे मिलने आए थे। यहां बैठकर ही हम सारे विश्व की सेवा कर सकते, इतनी पावरफुल स्थान तो ये है। सारे सेंटरों की सेवा एक ही यहां जगह बैठ के कर सकते हैं। अंतवाक शरीर से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। अंतवाक शरीर मतलब देह यहां है, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ गई ऊपर। बाबा से वरदान ले लो, बाबा से तिलक ले लो, दृष्टि से पवित्रता की किरणें ले लो, भ्रुकुटी से शक्तियों की किरणें ले लो, ये सब करके जाना है तो परम धाम में भी चक्कर लगा के और फिर घूमो संसार में। यहां वहां भिन्न भिन्न देशों के ऊपर, भिन्न भिन्न नदियों के ऊपर, भिन्न भिन्न समुन्दर के ऊपर, भिन्न भिन्न आत्माओं के ऊपर अपने असंख्य रूप धारण करना अमृत वेले। और जितने सेंटर, ये अभ्यास मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो हम लोग सब करते हैं, कि जितने हमारे केंद्र है सेवा केंद्र, हम अपने अनेक रूप धारण किए। सबसे पहले तो फरिश्ता, एक एक सेवा केंद्र में गए और वहां की संदली है, वहां पर हम बैठे, सामने बहने और बहनों के पीछे भाई बहने, और वहां बैठकर हम संकल्प कर रहे हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो उस सेंटर में पवित्रता के वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, एक। दूसरा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। आज की तारीख में देखा जाए तो ऐसा कोई भी केंद्र नहीं है जो विघ्न से मुक्त है। हर सेवा केंद्र में कोई ना कोई विघ्न है जरूर। किसी भी सेंटर में चले जाओ, किसी भी सेंटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां चल रही है, कोई ना कोई टकराव है। सेवाएं तो कर रही है, ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर अंदर से टकराव है, एक सूक्ष्म टकराव। कुछ दमित है, बहुत कुछ दबा हुआ है बहनों में, तो हमको उनको भी पावरफुल करना है। और जो भाई बहने हैं, इसके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है कि मैं आकाश में हूं, असंख्य रूप धारण किए, एक एक सेंटर पर गए, संगली पर मैं बैठा हूं, सामने बहने और बहनों के पीछे भाई बहने, सभी को दृष्टि दे रहा हूं। तो अंतवाक शरीर की सेवा है ये, एक। भक्तों की पुकार सुनो, दो। तीसरी, दुखी आत्माओं को सुख की किरणें दो, अशांत आत्माओं को इमर्ज करो सुबह अमृत वेले, उन्हें शांति की किरणें दो। अपवित्र आत्मा, विकारी आत्मा, भटक, हाँ वो एक दूसरी कैटेगरी है, विकारी आत्माओं को पवित्रता की किरणें। फिर एक दूसरी है भटकती हुई आत्मा, इविल स्पिरिट, उनसे थोड़ा बाद में देना उनको प्रकाश देने के लिए स्थिति बहुत पावरफुल चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको पसंद आ जाए हम
वैसे ही भैया जैसे भाई साहब बताते कि अगर हम प्योरिटी हमारी बढ़ती जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली उनको वो जा ही रहा है, क्योंकि उनको
हाँ नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है, ये भूत प्रेत आत्माएं उनमें प्रवेश करती है जो कमजोर है
मेंटली,
जिनमें इतनी पावर नहीं है, उन्हीं में वो प्रवेश है। शक्तिशाली आत्माओं के पास तो आ ही नहीं सकती। अगर कोई किसी का योग इतना अच्छा नहीं है, ज्ञान का चिंतन भी अच्छा नहीं है, और बस एक ही पुरुषाचारी भूत भटकती आत्माओं को इमर्ज करो, तो वो आ ही जाएगी। ये तो रहेगा बाजू में, फिर वो कुछ और ही चालू हो जाएगा। तो खाली हम ये शब्द प्रयोग करें, भटकती आत्मा, इविल स्पिरिट, ये शब्द लाना नहीं है। जो भटकती आत्मा है उनको ठिकाना मिल रहा है, बस उनको हम शांति की किरणें दे रहे हैं। तो भिन्न भिन्न ग्रुप इमर्ज करना है। अंतवाक शरीर की सेवा अर्थात सुबह अमृत वेले दुखी आत्माओं को इमर्ज किया, अशांत आत्माओं को इमर्ज किया, अपवित्र आत्माओं को इमर्ज किया, रोगी आत्माओं को इमर्ज किया, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में भी विजय भाई किसको सकाज दोगे? तीन लोग हैं हॉस्पिटल में जिनको सकाज देनी होती है, एक है डॉक्टर, दूसरा है पेशेंट, तीसरे है उसके रिलेटिव्स। तीन लोग है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसको है तीनों में से?
रिलेटिव
नहीं, चिकित्सक। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चिकित्सक को सकाश, उसकी बुद्धि ठीक रहनी चाहिए ना। फिर उसके बाद में मरीज, और फिर उसके जो परिजन है उनको सकाश। तीन सत्ता है, धर्म सत्ता को सकाश, राज सत्ता को सकाश, विज्ञान सत्ता को सकाश। एक एक इसमें बहुत सारी चीजें आती है। धर्म सत्ता में कितने गुरु गोसाई महामंडेश्वर सब आ जाएंगे, भक्त। विज्ञान सत्ता में इतने सारे जो विंग्स इंजीनियर्स और वो बहुत सारी चीजें आ जाएगी उसमें। तीसरी राज सत्ता में इतने राजनेता, राजनेता के साथ अभिनेता और अभिनेत्री भी ऐड कर देना, उनको भी ज्यादा जरूरत है। मनोरंजन जगत के नायक और नायिका है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है सकाश की। ये सेवा हमको करनी है। तो ये अलग अलग ग्रुप्स है। प्रकृति के पांच तत्वों को सकाश, आकाश में खड़े हो जाना फरिश्ते स्वरूप में, मुझसे पवित्रता की किरणें निकल रही है, आकाश में गई, बादलों को गई, सूरज को गई, चांद को गई, सितारों को गई, ग्रह को गई, नीचे उतरते उतरते वायुमंडल में पवित्रता की किरणें फैल रही है, नीचे उतरे धरती पर पैर रखा, पैरों से पवित्रता की किरणें संपूर्ण धरती पर जा रही है। और भी अगर टाइम है तो और बढ़ाते जाओ, फिर जाओ पांच महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, नीचे दक्षिण महासागर, ऊपर आर्टिक महासागर। पांच महासागरों के एक एक महासागर के ऊपर जाकर, महासागर ओशन की बात कर रहा हूं, सी की नहीं। सी तो हजारों है, छोटे छोटे जिसको कहते हैं ना समुद्र, वो तो बहुत है। यह महासागर पांच ही है मुख्य, एक हिंद महासागर भारत और अफ्रीका के बीच, दूसरा अटलांटिक महासागर अफ्रीका और अमेरिका के बीच, फिर अमेरिका और इधर भारत इतना बड़ा जो सबसे महान है अटलांटिक ओशन जिसको कहते हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जो बे ऑफ बंगाल से चालू होते हैं, इधर से चालू होता है कलकत्ता के आगे से, वो सबसे बड़ा है, उसको सकाश। नीचे जो है वो दक्षिण महासागर, ऊपर जो है आर्टिक महासागर, पांच महासागर को सकाश। अगर नाम याद नहीं रहते तो खाली सागर को सकाश, आर्टिक आर्टिक ओशन। सात महाद्वीप है, सबसे पहले जाओ यूरोप में, यूरोप के ऊपर, यूरोप के नीचे इतनी सारी देश है, सब यूरोपीय देश की सभी आत्माओं को सकाश, पवित्रता की किरने दो। सात स्वरूप है हमारे, सात महासागर है, अलग अलग जगह अलग अलग किरने। सबसे पहले यूरोप में गए, पवित्रता की किरने दो, यूरोप में बहुत सा है, जर्मनी स्पेन हो जो भी है। फिर अफ्रीका में जाओ, सुख की किरने दो संपूर्ण अफ्रीका। फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका में शांति की किरने, नीचे सुख की किरने। फिर एशिया खंड इतना बड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे एक लास्ट जो है वो एंटार्क्टिका है, वहां लोग तो नहीं रहते, रिसर्चर्स रहते, एक हाथ हजार लोग आते जाते रहते। मुख्य सात खंड है, पर वैसे पांच ही माना जाता है, अमेरिका उत्तर दक्षिण को एक ही समझा जाता है, कई लोग चार ही मानते, कोई यूरोप और एशिया को भी एक कर देते, यूरो एशिया कहते। तो हमारी सुविधा अनुसार तो एक एक खंड में जाना, खंड के ऊपर, महाद्वीप के ऊपर, और उसको सकाश देना। ये कार्य सकाश इनको दिया, तत्वों को दिया, दुखी आत्माओं को दिया, भक्तों को दिया, अशांत आत्माओं को दिया, और एक चीज जो आत्मा अभी तक ज्ञान में नहीं आई है उनका आह्वान, हे देवी देवता धर्म की आत्माएं आ जाओ, मान लेने आ जाओ, बाप आया है। तो उनका आह्वान करना, या अभी ये हो गया। फिर उसके बाद में कुछ विशेष आत्माएं हैं जिनसे हमको लगता है हमारा हिसाब किताब है, उनको इमर्ज करके सकाश। फिर और तीन ग्रुप, एक वो आत्मा है जिनको हमने बहुत दुख दिया है, उनसे माफी मांगो। एक वो आत्मा है जिन्होंने हमको दुख दिया है, उनको माफ करो। एक तीसरी आत्मा है जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है द्वापर से, भक्ति में भी सहयोग दिया था और अभी भी दे रही है कुछ कुछ आत्माएं, उन सबको धन्यवाद।
डिपार्टमेंट
हाँ वही, ये हो गया। फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट में घुसो अपने, वो सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है, ये तो इतना जरूरी नहीं था जो सबको दे दिया, महत्वपूर्ण काम इधर है। डिपार्टमेंट के ऊपर देखो एक एक आत्माओं को, और एक एक आत्माओं से माफी मांगना, माफ करना, पवित्रता की किरणें देना। एक डिपार्टमेंट अंतर डिपार्टमेंटल द्वंद्व वो जो होता है ना, वो दूसरे डिपार्टमेंट घूमो सारे, ज्ञान सरोवर के ऊपर जाओ सबसे पहले। हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण है, ज्ञान सरोवर के ऊपर गए, ज्ञान सरोवर के ऊपर में सभी आत्माओं को पवित्रता की किरणें सबसे पहले। तो फिर कुछ आत्माएं आपको लगता है जिन आत्माओं को दुख दिया, इसमें भी डिवाइड करो, तो एक एक डिपार्टमेंट में घूमो, ये डिपार्टमेंट में गए वहां सकाश, फिर वो डिपार्टमेंट टेलरिंग में गए, टोली में गए, किचन में गए, डाइनिंग में गए, एक एक डिपार्टमेंट में ऊपर ऊपर से जाओ। या फिर आज हम जहां जाने वाले हैं, हमको पता है आज यहां जाना है, पहले से ही वहां जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर लेना सकाश के द्वारा कि भाई गड़बड़ थी पिछली बार, तो अभी इस बार देख लेना जरा। पहले से ही भेज दिया आपने, फरिश्तों को पहले भेज देना, पार्षद जो होते ना मैसेंजर्स को पहले भेज देना सारी वहां की व्यवस्था ठीक करने के लिए, क्योंकि हम दिन में जाने वाले हैं ना, हम लोग ऐसे करते हैं।
ज्ञान सरोवर के लिए भैया सुबह करते हैं 15 मिनट, मतलब मधुबन के लिए पूरा आज इस कॉम्प्लेक्स पे कल उस काम पे, लेकिन ये डिपार्टमेंट वाला कुछ नया बताया तो इसे
डिपार्टमेंटल सकाश, सकाश एजेंसी।
बीच में हम लोग करते थे पूरा ज्ञान सरोवर के बाउंड्री जो है ना, उन्होंने पूरा बाउंड्री से फैला
नहीं, वो फिर से करना है। और एक दूसरा जो टोल नाका है अमृत वेले, वहां अंतभाग शरीर से आके वहां एक लाइन खींच दो कि जो भी आज अंदर आएगा इसमें उसको
पवित्रता का टैक्स दे,
उसको परिचय मिल ही जाएगा, जो आएगा वो फंस जाएगा, अब नहीं छूट सकता। एक तो वहां से चालू करो, फिर उसके बाद में संपूर्ण ज्ञान सरोवर को, संपूर्ण सकाश, एक एक डिपार्टमेंट में अलग अलग आत्माओं को जिनके संपर्क में आने वाले उनको सकाश, फिर यहां से भी बाहर निकलो, फिर पांडव भवन में सकाश, फिर हॉस्पिटल में सकाश। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि हम कभी कभी इस तरह का अभ्यास करते हैं, आज जो पेशेंट आने वाले हैं, पता नहीं कौन आने वाला है, उन सबको पहले ही सुबह अमृत वेला सकाश, जो आने वाले हैं तो पांडव भवन में सकाश, सारी आत्माओं को, सबको सकाश, जो सो रही है अमृत वेला उनको भी, और जो जाग कर योग कर रही है पावरफुल उनको भी, जो जिनकी बैठे तो है पर बुद्धि भटक रही है उनको भी, सबको सकाश। फिर पीस पार्क में जाओ, वहां पर सकाश, फिर म्यूजियम को सकाश, हॉस्पिटल में जाओ P1 P2 जनरल वार्ड और ICU, चार स्थान है। कोई होगा मरीज ज्यादा सीरियस, उसके रिलेटिव, उन सबको सकाश, या एक जनरल। और ये सब करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, ये 10-15 मिनट में सारा हो जाएगा। ये
चक्कर,
हाँ ये चक्कर, क्योंकि वो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, वो तो आप वैसे अगर जाओ एक एक डिपार्टमेंट में तो 10 दिन भी कम पड़ेंगे। हाँ ढूंढे, अरे वो तो है ही नहीं, चलो आने दो उसको, वो आएगा तब सकाश देंगे। वो वैसा नहीं होगा, ये तो इतना फास्ट है ना, ये अंतभाग शरीर की सेवा है। इस डिपार्टमेंट में गए, उस डिपार्टमेंट में, ज्ञान सरोवर पूरा किया, ये पूरा किया, संगम भवन, शांति वन, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, तपोवन, नदी, वो क्या सिंध सुंदा, वो बीच की वो कॉम्प्लेक्स है, BK कॉलोनी, वो शिवमणि है एक, वहां पर बूढ़े लोग हैं वहां पर, उनको एक नर्सिंग कॉलेज है, वहां बहुत सारी कन्याएं हैं, उनको भी सकाश, वो बाहर की कन्याएं हैं, आदि ज्ञान में आदि नहीं है, हाफ हाफ है, आधा निश्चय इधर आधा निश्चय उधर, ज्ञान में भी है और भी कुछ करना है, तो इस तरह की जो है उनको भी सकाश, तपोवन को भी सकाश, शांतिवन को भी सकाश, प्रकाशमणि पार्क को भी सकाश, BK कॉम्प्लेक्स को भी सकाश, संगम भवन को सकाश, और वो तलेटी के ऊपर, और फिर एक आबू के ऊपर घूमू, संपूर्ण आबू को सकाश, संपूर्ण सिरोही को सकाश, संपूर्ण राजस्थान को सकाश, और संपूर्ण भारत, फिर एशिया, और फिर बढ़ते बढ़ते सारा विश्व, और अब मैं आत्मा ऊपर हूं। फिर जाओ शिव सूक्ष्म वतन में, और फिर बाबा से रूरियान सर्व संबंधों को का अनुभव करना। तो अंतवाहक शरीर द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी, ये जो सेवा है ये सबसे पावरफुल सेवा है, क्योंकि इसमें फिर हम जब, फिर ये भी देखना है कि मैं अब इस तन में आ गई हूं, फिर इस तन से निकलना, इस तन में आना और इस तन से निकलना, इस तन में आना और इस तन से निकलना, फ्लेक्सीबल हो, बाबा ने कहा ड्रेस तुम्हारा ढीला हो, टाइट नहीं हो। ये सुबह ये सारा एक बार कर लिया बहुत विस्तार से और अच्छे से, ये सारा जितना बताया बाबा से सर्व संबंध पांच स्वरूपों का अभ्यास, 1 घंटे में भी हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट में भी हो सकता है, और अगर अच्छा और अनुभव चाहिए तो फिर 2-3 घंटे भी लगाओ, कितना भी इसको खींच सकते हो। दूसरा जो है शाम का, अब एक तो सुबह को पावरफुल बना दिया, शाम को पावरफुल, फिर से 5 तत्वों को एक बार सकाश देनी है, 24 घंटे में 2 बार 5 तत्वों को हमें सकाश देनी है, ट्वाइस। तो शाम को एक बार फिर से, शाम को फिर से आत्माभिमानी स्थिति, शाम को एक दिनचर्या में जो कुछ हुआ 2 बार हमें बाबा को चाट देना है, एक शाम को और एक रात को, रात को योग का चार्ट कि इतना घंटा योग और ये जो भी है वो रात का, दूसरा शाम का जो है वो दिन भर का सेवा समाचार, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये किया, इससे झगड़ा, इससे लड़ाई, जो भी है अच्छा बुरा जो भी है हल्का करो बाबा ने कहा है ना स्वयं को, तो वो शाम को एक बार, तो एक बार शाम को, फिर योग, और फिर रात का सोने से पहले एक, सोते जब बिस्तर पर लेट जाते हैं वो सबसे बेस्ट टाइम है योग का, वहां पर फिर से उसी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए कि मैं कौन, मैं आत्मा, आत्मा मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा की क्या क्या बातें मुझे पता है, वो सारा रिवाइज करना खुद ही खुद को, जो जो पता है, जो भी पता है, आत्मा विनाशी है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है, आत्मा इतने जन्म देती है, मतलब वही 7 डेज कोर्स की जो बातें हैं ना, वही स्वयं को रिपीट कराते रहना, तो आत्मा अभिमानी
आ ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाते
हैं। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, बाबा को याद करते कोर्स कर सो जाना, बाबा की गोदी में सो जाना, ज्ञान चिंतन करते करते सो जाना, योग करते करते सो जाना, ये सब अच्छी बातें हैं सारी, इसमें खाली एक ही है कि माया प्रवेश ना करे, बस माया प्रवेश करेगी टीवी से इंटरनेट से, ये दो मार्ग है उसके। कई लोग टीवी भी देखते हैं और भोजन भी करते, कहते हैं बाबा की याद नहीं चल रहा है, जब नीचे देखते हैं तो बाबा की याद और ऊपर देखते हैं तो सीरियल, दोनों काम साथ में है, इसमें बुराई क्या है। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो पुरुषार्थ अभी चालू है उससे डबल, जो भी अभी चालू है उससे डबल। अभी हमने जैसे अभी बता रहे थे ना कि नेक्स्ट संडे की जो मुरली है वो हम कल से पढ़ना चालू करेंगे, मतलब आप सबको कल से ही पढ़ना चालू कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे वाली रोज थोड़ा 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 थोड़ा, 15 मार्च 99 की है वो तो पता चल जाएगा, या कहां से मिल भी जाएगी, प्रिंट आउट ले लो, नेट से ले लो, कहीं से भी ले लो, ताकि एक हफ्ता भर हम बुक्स तो सबके पास ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं भी है तो मोबाइल से आप कहीं से भी मिल सकती है। तो मंडे से ही संडे की मुरली पढ़ना चालू करना है, कौन से संडे की, आने वाला संडे, अभी का तो हो गया, तो हम यहां पर जो मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, तो सैटरडे इवनिंग को जो संडे की मुरली है उसी में से आप लोगों को 10 चिंतन बिंदु निकालने हैं, हर एक को पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, हर एक को अपने अपने निकालने हैं। 15 मार्च 99 की मुरली है और उन चिंतन बिंदु पर ही हम सीधा चर्चा करेंगे सैटरडे को। सैटरडे को चिंतन हो गया, चर्चा हो गई, फिर आप जब संडे वो सुनोगे ना तो आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट डिस्कस कर चुकी होंगे, कर चुके हैं हम, एक एक पॉइंट पर हमारा चिंतन हुआ है, हमने पहले से ही पढ़ ली है और बहुत सारी याद भी है, उसके ऊपर चर्चा भी हो गई है, तो वो जो सुनोगे तब वो बहुत आनंद आएगा उसमें, और सारे दिन पर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी फिर संडे वाली, क्योंकि हमने उसकी तैयारी एक हफ्ते से चालू कर दी है। इसके लिए सैटरडे से ही, कल से ही चालू करना है पढ़ना, ताकि हम सैटरडे ही उसको शाम को डिस्कस करेंगे, और हम अभी नेक्स्ट जो है हमेशा सैटरडे ही करेंगे, मंडे का कैंसिल, सैटरडे का अच्छा टाइम है एक तो ये, और दूसरा हमारा जो पांडव भवन का ग्रुप है हम 1 तारीख से लेके तो 31 तारीख तक एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है, 41 या 42 मुरलियां जो है 69 की उसको हम रिवाइज करने वाले हैं पूरा, हर दिन दो दो रिवाइज, पढ़ना नहीं, 69 की सारी, पहले तो 18 तारीख की है जिसमें 13 संदेश है, तो हम 2 तारीख को सबसे पहले तो 6 संदेश, 7 दो 3 तारीख को 7 संदेश, तो 13 संदेश और 40 मुरलियां है, जो बड़ी बड़ी है उसको एक एक दिन दिया है, कुछ कुछ मुरलियों को दो दो मुरलियां एक एक दिन में रिवाइज, मतलब सब पहले से ही पढ़ के आएंगे, पहले से ही सबको पता है और सीधा डिस्कशन उनके ऊपर, तो ये बहुत बड़ा टारगेट रखा है 1 महीने में 40 मुरलियां कंप्लीट करने का, 1 तारीख से 31 जनवरी तक, उसमें एक दिन छूटेगा खाली 18 जनवरी जो बाबा से डायरेक्ट सुनेंगे। तो आप भी मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा टेंशन आना चाहिए पुरुषार्थ का तो ही कुछ होता है, नहीं तो ढीले पड़े रहते हैं, ये भी करना है वो भी करना है ऐसा भी करना है ये भी करना है तो हम कुछ करते हैं, ऐसे ही छोड़ दिया ढीला खुद को तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रेस चाहिए इस तरह का, हमें बहुत कुछ करना है इस बात का। तो कल से आप संडे की मुरली पढ़ेंगे, 15 मार्च 1999 की, और साथ में 69 की जो किताब है उसको थोड़ा ढूंढ के रखो कहाँ है, तो कमरे में जो जहां भी होगी उसको थोड़ा बाहर निकाल के थोड़ा अपने टेबल के आसपास उसको वहां तक लो ला लो, फिर उसके बाद में देखेंगे, और उसमें थोड़ा बीच बीच में नजर घुमाते जाओ उसमें, वो भी पढ़ते जाओ, अलग अलग टाइम अलग अलग पढ़ना, शाम को ये पढ़ना, सुबह का टाइम ये पढ़ना, दोपहर का टाइम ये पढ़ना, तीन अलग अलग चीजें पढ़नी है। अव्यक्त साकार मुरली भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, अव्यक्त वाणी भी पढ़ते रहना, 69 का भी पढ़ते रहना, और संडे को आने वाले वो भी पढ़ते रहना, ताकि कहीं चांस ही ना हो भटकने का। हाँ, तो जितना जो बिजी है वही माया से मुक्त है। ओम शांति।